किसी चीज के ममनू होने में या हराम होने में कोई फर्क है? और दूसरी बात इसी से रिलेटेड है कि झूठ बोलना क्या हराम है? अगर हराम है तो सूरह अराफ की आयत 33 के मुताबिक 5 में से कौन सी चीज का इतलाक इस पे होता है? मिसाल के तौर पर एक कॉमेडियन है, वो किसी को हंसाने के लिए झूठ बोलता है, लेकिन वो किसी की अकतल्फी नहीं कर रहा, कोई शिक भी नहीं है, कोई इमोरलिटी भी नहीं है उसके अंदर, तो वो अबू दाऊद की इस हदीस के लिहाज से किस तरह गलत है जिसमें उस सल्लम ने फरमाया कि तबाही है उसके ऊपर कि जब वो बोलता है तो झूठ बोलता है ताकि लोगों को उससे हंसाए? इसकी थोड़ी सी वजाहत करने।
अच्छा जी, शुक्रिया जी। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि हराम है, ममनू है, अल्लाह ने रोका है। इसी तरह से और बाज़ ताबीरें भी अरबी ज़ुबान में हैं, उर्दू में भी हैं, ये सब इख्तियार की जा सकती हैं। और जब ये ताबीरें इख्तियार की जाती हैं तो सियाक सबाक बताता है कि किस दर्जे में बात है। यानी आखिरी दर्जे में रोका जा रहा है तो फिर हम हराम का लफ्ज़ बोलते हैं, अगर उससे नीचे की कोई सूरत हाल है तो फिर कराहत की ताबीर इख्तियार की जाती है कि अल्लाह ने अपनी नापसंदीदगी का इज़हार कर दिया है। तो इसी वजह से दो ही बड़ी कैटेगरीज हैं। उस जानिब क्या है, फ़र्ज़ और मंदूब, फ़र्ज़ और मुस्तहब या फ़र्ज़ और नफल, एक ही मानी में है ये अल्फाज। और इधर क्या है, हराम और मकरूह। तो बड़ी चीज़ें तो यही हैं। बाकी ये है कि हमारे फुकहा ने उनके भी फिर कुछ दर्जे तय करने की कोशिश की है, मेरे ख़्याल में उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। चीज़ें या आखिरी दर्जे में ममनू होती हैं, उन्हें आप हराम कह लें, ममनू कह लें, जो लफ्ज़ चाहे इख्तियार कर लें, या वो नापसंदीदा होती हैं। नापसंदीदगी के दर्जात तो हर शख्स जानता है। बाज़ चीज़ों के बारे में हम समझते हैं सख्त नापसंदीदा है, और बाज़ के बारे में इतना ही काफ़ी होता है कि नापसंदीदा है। ज़रा इब्तदाई से दर्जे में नापसंदीदगी का इज़हार कर दिया जाता है। झूठ का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो वो हुरमत के दर्जे में उस वक्त आता है जबकि आप किसी की हक तलफी के लिए झूठ बोलते हैं या किसी की जान माल आबरू के ख़िलाफ़ ज़्यादती के लिए झूठ बोलते हैं। इससे नीचे जब झूठ से रोका जाता है तो ये सद्दन लज़रिया है। यानी अगर एक आदमी लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोलने का आदी हो जाएगा तो इसका अंदेशा है कि किसी दिन किसी संजीदा मामले में भी झूठ बोलेगा। तो इसलिए बचने की सही करनी चाहिए। पूरे दीन ही में ये दो चीज़ें होती हैं, यानी एक वो जगह है जहाँ पे हुरमत वाक़ हो रही होती है और एक वो जगह है कि जहाँ से बात शुरू हो जाती है। उसमें सद्दे ज़रिया का उसूल है। जैसे नशा आवर चीज़ों के बारे में फरमाया कि जिस चीज़ की ज़्यादा मकदार नशा पैदा करे उसके एक कतरे से भी बचो। तो ये दर हकीकत कतरे से भी बचने की तालीम है जो दी गई है, और इससे कोशिश करनी चाहिए। बाकी रह गई ये बात कि किसी जगह मुखातब को मालूम है ये कि ये हमें हंसाने के लिए बात कर रहे हैं या कोई लतीफ़ा सुना रहे हैं, उस पर इसका इतलाक़ नहीं होता। यानी हंसाने के इरादे से आप बात कर रहे हैं लेकिन दूसरा गलतफहमी में पड़ सकता है, तो उसमें इज्तराब करना चाहिए।
तो ये अहादीस को ऐसे ही हम पढ़ लेते हैं तो क्या ये दुरुस्त है कि उनसे हम अहकामात इस तरीके से अक्स करते रहे? मतलब
मैं तो हमेशा तवज्जो दिलाता हूँ कि अहादीस उलमा के पढ़ने की चीज़ है, इसको आम आदमी को नहीं पढ़ना चाहिए। और अगर पढ़ना है या सुनना है तो किसी आलिम से पढ़ना और सुनना चाहिए, क्योंकि ये इल्म की दुनिया की चीज़ है। आम आदमी को ना इसका मुकल्लफ किया गया है, ना कभी इसकी पहले इशात इस जाविये से की जाती थी। सबसे पहले हमारे यहाँ जिस शख्स ने दीन को समझने के उसूल तरतीब दिए हैं, उसूल तो खैर उससे पहले भी सामने थे लेकिन एक बाकायदा किताब लिखी, वो इमाम शाफ़ी हैं, उसमें उन्होंने उन्वान कायम किया है कि हदीस इल्मुल खासा है, ये इल्मुल आम्मा नहीं है, आम लोगों का इल्म ही नहीं है ये तो असल में खवास का इल्म है, अहले इल्म को इस तरफ रजू करना चाहिए। ये ऐसे ही है जैसे कि एक दीन का आलिम अपने से पहले के उलमा की चीज़ें पढ़ता है। कोई आदमी अगर मिसाल के तौर पर कुरान की तफसीर करने बैठ गया है और उसको कुछ पता नहीं कि साहिब कशाफ ने क्या लिखा है, राजी ने क्या लिखा है, इबन कसीर ने क्या लिखा है, उसको तंबीह की जाएगी कि तुम आज नहीं पैदा हुए हो, इससे पीछे इल्म की एक पूरी रवायत है, उससे तुम्हें वाकिफ़ होना चाहिए। उसमें ज़ाहिर है कि सरे उनवान रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म है, तो वो कैसे उससे बेनियाज हो सकता है। तो ये उलमा की चीज़ है, आम लोगों को इस तरह अलग अलग जुमले नहीं पढ़ने चाहिए। अगर पढ़ना हो तो फिर किसी साहिब इल्म की हिदायत के मुताबिक पढ़िए।